नमस्कार साथियों, बैतूल मोबाइल वाणी से चारुमती वंजारे। और आज हम एक ऐसी महिला जो बैतूल जिले की पहली महिला पत्रकार है और ये एक साथ कई समाज कार्यों में जुड़ी है, श्रीमती गौरी पदम। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं इस शक्ति के लिए, क्योंकि मैंने इनके जो काम देखे और सुने तो मेरे नज़रों के सामने वास्तव में अष्टभुजा माँ दुर्गा की प्रतिमा सामने आ गई, जिन्होंने अपने हजारों हाथों से हजारों काम किए। और वास्तव में आज नारी जो काम करती है, तो सच में जो माँ दुर्गा को अष्टभुजा कहते हैं, ऐसे ही नारियों में भी अष्ट भुजाएँ होती है जो एक साथ कई काम करती है। इनकी इतनी ख्यातियाँ हैं जो मैं पूरी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ ख्यातियां मैं बता रही हूँ। इन्होंने सबसे पहले भारत सरकार द्वारा इनको युवा पुरस्कार प्राप्त मिला हुआ। 1999 से पत्रकारिता बैतूल जिले की प्रथम महिला रही। कारगिल युद्ध के बाद से देश की अंतिम सीमा तक पहुंचकर इन्होंने बहनों को साथ में ले जाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नारायणी पुरस्कार सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्राप्त हुआ। समर्पित आध्या साइनिंग स्टार स्वयं सिद्धा पुरस्कार से सम्मानित है। ऑटो एम्बुलेंस का संचालन करती है। 720 घायलों को इन्होंने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। सशक्त सुरक्षा पैड बैंक महिलाओं के स्वास्थ्य और मासिक धर्म की भ्रांतियों को दूर करने और छोटे बच्चों के लिए बर्ड्स ऑफ बैतूल का कार्य भी कर रही है। हेयर डोनेट कैंसर पीड़ितों के लिए किया। तो ऐसी महान हमारे देश की महिला से आज हम बात करेंगे जो हमारे साथ यहाँ पे बैठी है, और मैं अगली बात इन्हीं से करवाती है, अपना परिचय से स्टार्ट करेंगी। श्रीमती गौरी पदम।
वंदे मातरम साथियों, मैं गौरी बालापुरे पदम। बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति हमारा संगठन है, जिसके माध्यम से जो है हम अलग अलग गतिविधियाँ अलग अलग सामाजिक कार्यों को करते हैं। मैं बैतूल जिले की पहली महिला पत्रकार भी हूँ और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में पिछले 25 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं। हमारी बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति ने इस वर्ष जो है 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। कारगिल युद्ध के बाद जब देश युद्ध की कारगिल युद्ध के दौरान जब देश हमारा युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा था, जगह जगह सैनिकों के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, शिविर लग रहे थे, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे थे, ऐसे में हमारे मन में ये ख्याल आया कि ये जो जज्बा सेना के लिए होता है वो सिर्फ युद्ध के दौरान ही क्यों होता है, सेना के लिए ये जज्बा ये हौसला अफजाई हमेशा होनी चाहिए। तो जो सैनिक देश के विभिन्न सरहदों पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने अपना हर पल हर दिन हर रात हमारे लिए कुर्बान कर दी है, हमारे हर त्यौहार अपने लिए कुर्बान कर दिया है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक त्यौहार सुनिश्चित किया कि हम सरहद पर पहुंचकर बहनों का प्रिय त्यौहार जो है रक्षाबंधन का होता है वो मनाएंगे। और 25 वर्षों से ये सिलसिला लगातार जारी है।
अच्छा दीदी, बताइए कि आपने जो इतने सारे काम किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके मन में कैसे आई और ये सारे काम करने में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, वो थोड़ा सा बताइए
आप। देखिए, संघर्ष तो मैं कहती हूँ कि जो संघर्ष जो है हमेशा व्यक्ति को निखारता है और उसे कुछ अच्छा करने के लिए जो है प्रेरित करता है। आलोचना से आप यदि घबराएंगे नहीं तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और जिस तरह के काम शुरू होते गए, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती गई, या कहना चाहिए कि हमें हम जो भी काम मैं करती हूँ उसमें सबसे पहले मेरी आत्मसंतुष्टि होती है। शायद मुझे अच्छा लगता है कि हर दिन मेरी वजह से कोई खुश हो जाए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाए। मेरा तो टैगलाइन सॉन्ग भी वही है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो जिंदगी का ये उसूल है कि परेशान लोगों को यदि आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। भले आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और आप अर्थ से यदि उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनको आप साथ में खड़े हो सकते हैं, वो भी एक तरह की मदद है।
ये जितने भी आपने जो काम किए हैं, क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इसमें?
बिना परिवार के सपोर्ट के कैसे संभव है। मेरे चाहे जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब मुझे अपने परिवार से माता पिता बहनों ने सभी ने सपोर्ट किया, क्योंकि आज से 25 वर्ष पहले आप खुद सोचिए कि बेटियां कितना बाहर निकलती थी। 25 वर्ष पहले मैं बैतूल बाजार जैसे नगर से निकल कर रात के 10 बजे तक अपने घर पहुंचती थी। सुबह 10 बजे यदि निकलती थी तो वो परिवार का विश्वास था, उन्हें पता था कि हमारी बेटी यदि घर से निकल रही है तो कहीं किसी गलत कदम पर वो नहीं जा रही है, किसी गलत राह पर वो नहीं जा रही है, उनका विश्वास था। इस वजह से मैं आगे बढ़ पाई। विवाह के बाद सासू माँ ने, ससुर जी ने, हस्बैंड ने, और उसके बाद बच्चे ने, मतलब हर परिवार के हर सदस्य ने मेरे मनोबल को बढ़ाया है, मेरा साथ दिया है, और यही वजह है कि मैं कहीं ना कहीं समाज में एक अपना स्थान बना पाई, अपना मुकाम बना पाई। और मुझे बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए कुछ करना। यदि मुझसे कोई अपेक्षा करता है किसी तरह की तो मैं उन अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करती हूँ।
दीदी के द्वारा समाज में जो महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं तो उसके लिए मणिकर्णिका एक अवार्ड से दीदी सम्मानित करती है उन महिलाओं को। तो मैं दीदी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप महिलाओं को और क्या संदेश देना चाहती हो?
देखिए, स्त्री जो है ना स्वयं को स्त्री मानना सीख ले, वो ये नहीं सोचे कि वो पुरुषों की बराबरी करे, क्योंकि स्त्री अपने आप में सक्षम है और उसे तो शक्ति का स्वरूप माना ही जाता है। लेकिन मैं थोड़ी सी अलग तरह से चलती हूँ कि आप जो है आप वो रहिए, आप कुछ बनने की कोशिश मत करिए या किसी से प्रतिस्पर्धा मत करिए। आपके अंदर हुनर है तो आप उस हुनर को निखारिए, चाहे वो हुनर लेखन का हो, चित्रकारिता का हो, पत्रकारिता का हो, नृत्य का हो, आपका हुनर आपको अपनी पहचान दिलाएगा। तो आप अपने हुनर पर काम कीजिए। अगर आप प्रतिस्पर्धा करेंगे और किसी के बराबरी करने की कोशिश करेंगे तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि बराबरी करने से बेटर है कि यदि एक लाइन आपके सामने खींची हुई है तो उसके सामने आप एक बड़ी लाइन खींचकर अपने आप को साबित करने की कोशिश कीजिए।
इतना उत्साह, उमंग, जोश एक नारी में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि समाज में, देश में नारियों को पिछड़ना चाहिए या अपने परेशानियों को देखते हुए निराश होकर बैठना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने, जो मैं दीदी से जो आज बात करी है, इनके काम हमारा समय उतना नहीं है, इनके काम अगणित है और इनकी गणना भी नहीं की जा सकती है। जो स्वयं को सिद्ध कर सकती है वो एक नारी होती है। तो ऐसे आपने देखा कि गौरी दीदी ने किस प्रकार से अपने कार्यों को समाज में फैलाया हुआ है। हम अगले और एक इंटरव्यू में इनसे बात करेंगे। जो कुछ बचा होगा, जो नारियों को उत्साह दिलाएगा, वो सारी चीज़ें मैं अगले इंटरव्यू में इनके माध्यम से लेती हूँ। धन्यवाद।